ओम शांति। बहुत दिनों के बाद जैसे आज फिर से क्लास हो रही है, ज्ञान में तो सभी बहुत अच्छे से चल रहे हैं, समझ भी रहे हैं। पुरुषार्थ अपने हिसाब से करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन सभी बातों में भी सबसे बड़ी बात है अपने आप को समझना। जो बार बार हम इस बात के ऊपर आते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं समझते तो न ज्ञान समझ आएगा, योग में आगे बढ़ पाए। जीवन में आज हर इंसान कुछ न कुछ पाना चाहता है, फिर वो लौकिक हो, अलौकिक हो या पारलौकिक हो। छोटा सा सवाल है सबके लिए, आप जो चीज पाना चाहते हैं उसके पीछे बस एक क्यों लगा दीजिए कि वह बात आपको क्यों चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अलौकिक से। अगर आप कहते हो कि मुझे अमृत वेला करनी है, तो पहला सवाल है क्यों करनी है, मुरली सुननी है क्यों सुननी है, ट्रैफिक कंट्रोल करना है क्यों करना है, गुण धारण करने हैं क्यों करने हैं। लौकिक में शारीरिक सुख चाहिए, मतलब शरीर ठीक चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य चाहिए, धन अच्छी तरीके से चाहिए, परिवार ठीक चाहिए, क्यों चाहिए। सभी बातें आपको क्यों चाहिए, क्योंकि जब तक आप इन सभी बातों के आगे क्यों नहीं लगाते तब तक आप जिस चीज को पाना चाहते हैं वो आपको नहीं मिल सकता। पहले क्यों लगाना सीखिए, क्यों लगाने के बाद आपको जवाब मिल जाएगा, और अगर जवाब मिल गया और उस जवाब से आप संतुष्ट हो तो चीज आपकी हो, वो सुख, वो ज्ञान, वो योग, वो मुरली सारा आपके अंदर उतर जाएगा, आपका जीवन बन जाएगा। तो जो भी आप करना चाहते हो जीवन में, पहले अपने आप से पूछो क्यों करना चाहते हैं। जब क्यों का आंसर आपको मिल जाएगा तब जीवन अपने आप सुखी होगा। हम यही बात कहेंगे, आज दुनिया में हर इंसान कहता है कि मेहनत बिगर फल नहीं मिलता। हम कहते हैं मेहनत के साथ जो फल मिलता है वो खाने के बाद भी मेहनत ही दिलाता है। मेहनत के बिना जो फल मिलता है वही आपको सुख देता है। अब सोचो आप किसी कार्य के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो और मेहनत करने के बाद वो चीज आपको प्राप्त होगी। अब अनुभव करके देखो अपने जीवन को, वो चीज मिलने के बाद क्या आपसे मेहनत छूट गई, नोटिस करके देखो। मतलब सार रूप में कहना यही है, जब आप में आ जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, मेहनत खत्म हो जाएगी। मेहनत कब करनी पड़ती है, जब हमारी रियल आइडेंटिटी हमारे पास नहीं है कि मैं कौन हूँ। आत्मिक स्थिति में आने के बाद मेहनत नाम की कोई चीज नहीं है, बहुत बार अपने क्लास में भी सुना है। ज्ञान के लिए भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, योग के लिए भी नहीं, धारणाओं के लिए नहीं, सेवाओं के लिए भी। मतलब अगर आप बस आप में आ जाते हैं तो आपको बाप मिल जाएगा, और जहाँ बाप हैं वहाँ मेहनत से परे हैं, मेहनत से छूट जाएंगे। और अगर आप में नहीं हो तो आपको माया का श्राप मिल जाएगा, और जहाँ श्राप है वहाँ कष्ट ही कष्ट है, मेहनत ही मेहनत है। तो सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा पुरुषार्थ है अपने आप में आना, मैं कौन हूँ। हर मोमेंट को चेक कीजिए, क्या आप जी रहे हो। अभी भी हम क्लास में बैठे हैं, क्या यह क्लास आप सुन रहे हो, चेक कीजिए अपने आप को। अगर आप सुन रहे हो तो आपको सुनने की जरूरत नहीं, वो अपने आप आपके अंदर उतर आएगा। सुनने की आवश्यकता नहीं, अपने आप अंदर उतर आएगा। और अगर आप नहीं सुन रहे हो तो आप यहाँ उपस्थित नहीं हो, अब्सेंट हो यहाँ पर। तो हर मोमेंट में अपने आप को चेक करो कि क्या यह मोमेंट मैं जी रही हूँ या मेरा नाम मान शान पोस्ट पोजीशन जी रहा है। आज बहुत बार हमने सुनी ये बात कि आज हर इंसान जीना चाहता है लेकिन जीने का एहसास नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि वो नहीं जी रहा है। जब वो जीना शुरू करेगा तो उसको जीने का परम आनंद मिलेगा। जीवन किस बात को कहा जाता है? ऐसे नहीं कि जीवन कोई संसार है तो उसको ही जीवन कहते हैं, नहीं। एक एक सेकंड, आज एक एक शब्द जो आप सुन रहे हो वो आपका जीवन है, उसको अनुभव कर रहे हो वो आपका जीवन है। बहुत बार हम योग में सुनते हैं कि आधा घंटा एक घंटा योग करना है तो अपने आप को सभी से डिटैच करो, मतलब भूल जाओ, घर को भूल जाओ, बाल बच्चों को भूल जाओ, सबको भूल जाओ। योग में बहुत बार हमने सुना है और उस समय योग करते हैं। देखिए यहाँ उल्टा है थोड़ा सा। जब कोई आत्मा आपको कहते हैं इन बातों को भूल जाओ तो सबसे ज़्यादा वही बातें याद आती हैं। तो मत भूलो किसी को, बस आप जहाँ हो वहाँ प्रेजेंट रहो, बाकी अपने आप भूल जाएगा। ऐसे है कि योग में रहते आधा घंटा एक घंटा तब डिटैच रहे, बाबा के साथ रहे, योग लगाए, अपने साथ रहे, ये अलग बात है। इसको योग कहेंगे लेकिन टेम्पररी। परमानेंट योग किसे कहेंगे? अब जहाँ हो वहाँ आप, मतलब आप इस रूम में बैठे हो तो आप रूम में ही हो, इस रूम के बाहर क्या हो रहा है आपको पता नहीं, ना आपका मन है वहाँ ना आपका तन है वहाँ, कुछ भी नहीं। मतलब आप योग में हो, प्रेजेंट में हो, क्योंकि आप आपके साथ हो। जो अपने साथ होता है वो बाप के साथ होता है, ये क्लियर है। तो इसलिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ है अपने साथ रहना। आज देखो बहुत बार बहुत सी आत्माएं कहती कि घर में अगर 10-20 लोग हो तो चलेगा, लेकिन अकेला हूँ या अकेली हूँ तो एडजस्ट नहीं होता, जमता नहीं। मतलब घर खाने को उठता है, कारण खुद से डर लग रहा है। लोगों से कोई नहीं डरता, खुद से ही डरते हैं, हर कोई खुद से डरता है। इसलिए जब तक खुद का डर नहीं निकलता तब तक आप जी नहीं पाए। खुद का डर कब निकलेगा? जब खुद के साथ रहना शुरू करेंगे। आज हर किसी के साथ रहना आता है लेकिन खुद के साथ रहना नहीं आता। 99.99 आत्माओं के लिए असंभव है, क्योंकि खुद के साथ जीना कभी सीखा ही नहीं, सबके साथ जीना सीखा है। तो आज एक छोटे से डिस्कशन में हम एक बात पक्की करेंगे कि हम क्या हैं और हमें जीवन कैसे जीनी चाहिए। अगर हम आत्मा हैं तो आत्मा समझ के जीवन जीने चाहिए। बहुत बार आपने ये भी बात सुनी है कि आत्मा समझकर अगर आप कोई कर्म करते हैं तो उसमें आपको सफलता ही मिलती है। सफलता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कैसे है कि आत्मा समझते ही सफलता और आप एक हो जाते हैं, अलग अलग नहीं। देह समझते ही सफलता अलग और आप अलग, क्योंकि सफलता हमेशा आत्मा के साथ चलती है और असफलता देह के साथ चलती है। देह के साथ कभी कभी सफलता मिलेगी भी, लेकिन श्योरिटी नहीं कि वो सफलता आपको सुख देगी 100%। आज देह के साथ हायर एजुकेशन हो रहे हैं, बड़े बड़े जॉब्स मिल रहे हैं, बिजनेस चल रहा है विथ बॉडी, देह के साथ चलता है, लेकिन उसमें आप देखिए ज़्यादातर तनाव है। और आत्मा के साथ सिर्फ अध्यात्म चल रहा है, उसमें सुख है। तो हमें अपने साथ रहना पड़ेगा, अपने साथ चलना पड़ेगा, तब जाके सब कुछ मिल जाएगा। आज सुबह में एक फोन आया था, फोन कॉल आया, उन्होंने कहा कि पुरुषार्थ ठीक से नहीं हो पा रहा, मैं अमृत वेले उठना चाहती हूँ लेकिन उठ नहीं पाती हूँ। इतनी बार मुरली करना चाहती हूँ लेकिन हो नहीं पा रही। मैं इतना योग करना चाहती हूँ, मैं इतनी सारी धारणाएं करना चाहती हूँ लेकिन हो नहीं पा रही। कारण कारण एक ही है, मैं करना चाहती हूँ। कोई भी आत्मा विश्व की मैं से न ज्ञान धारण करेगी, न योग करेगी, न पुरुषार्थ करेगी, न सेवाएं करेगी, कुछ भी नहीं कर सकती। आपसे बाबा करा रहा है। इस दुनिया में किसी की कैपेसिटी नहीं अमृत वेले उठकर एक घंटा योग करके दिखाए, वो बाबा करवा रहा है। बहुतों को अनुभव है, कोई भी हाथ उठा के दिखाए कि मैं योग करता हूँ, मेरी पावर है योग की, इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कह सकता। कहना यही है सार रूप में कि आप नहीं कर रहे हो, वो आपसे करा रहा है। अगर ये आपको निश्चय है, बात खत्म हो गई। यहाँ पर मेहनत मेहनत तब तक करनी पड़ेगी जब तक आप करेंगे। जिस दिन आपके मुख से निकलेगा कि बाबा करा रहा है, मेहनत खत्म, फिर ना आपको पुरुषार्थ की चिंता रहेगी, न योग की, न ज्ञान की, न धारणाओं की, क्योंकि आपको निश्चय है बाबा कराए। लेकिन उस निश्चय में भी आगे पीछे हो गए कुछ नहीं। इसलिए सबसे पहला निश्चय अपने ऊपर आना चाहिए कि मैं कौन हूँ। कुछ भी करके अपने आप को पक्का करो कि मैं कौन हूँ। जिस दिन आपका मैं पक्का हो जाएगा, सारा खेल वहाँ से शुरू होगा। आज हर कोई कहता है जीवन में बहुत तनाव है। हम कहते हैं कुछ भी नहीं जीवन में तनाव, 0% है। क्यों 0%? क्योंकि तनाव जिसके जीवन में है वो नहीं जो वो है। इसलिए आप जब आपके सत्य स्वरूप में आ जाएंगे, तनाव नाम की सारी चीजें दूर हो जाएगी। सत्य स्वरूप में आना ही सभी प्राप्तियों का सार। तो कुछ भी हो जाए, आपको सत्य में आना है, मैं कौन हूँ। इसलिए मैं को बदल दीजिए, सारा खेल बदल जाए। बहुत बार सुना 5000 साल का ड्रामा मैं से शुरू होता है और मैं पर ही खत्म होता है। इस मैं के लिए ही सारे झगड़े चल रहे हैं। आज हर इंसान सुख पाना चाहता है लेकिन उस प्रकार से नहीं पा सकता जिस प्रकार से उसे चाहिए। कारण मैं। जिस दिन मैं खत्म होगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सभी दुखों का मूल कारण है अहंकार। क्योंकि शरीर, जिसे देह अभिमानी स्थिति कहते हैं, शरीर समझना कहते हैं, उसमें मैं अहंकार वाला होता है। सभी बातों का मूल कारण है अहंकार। तो हर वक्त आप अपने आप को चेक कीजिए। किसी से भी बात करते समय, किसी को कोई चीज देते समय, व्यवहार करते समय, किसी के प्रति कोई भी अनुभव शेयर करते समय, क्या मैं अहंकार से तो ये सारे कर्म नहीं कर रहे हैं? अगर अहंकार से कर रहे हैं तो दुख मिलेगा। हर किसी के प्रति अब चेक कीजिए। बच्चों के प्रति हो, घर वालों के प्रति हो, ब्राह्मण परिवार के प्रति हो, अपने आप को चेक कीजिए हर बात में। बहुत बार ये सूक्ष्म बात है। बहुत बार हम मुरली भी पढ़ते हैं ना, तो मुरली पढ़ने में भी सूक्ष्म अहंकार होता है। आई एम रेडी, ये सूक्ष्म होता ही है। उस वर्ड से रिप्रेजेंट होता है कि वर्ड कैसे निकलता है, उस वर्ड में क्या है। योग भी करते हैं कभी कभी, उसमें भी सूक्ष्म अहंकार होता है। तो अहंकार को लेकर जो भी बात करेंगे, बीच तो अहंकार का बोल तो दुखी मिलने। इसलिए हर सेकेंड अपने आप को चेक करो कि मैं आत्मा समझ कर कर्म कर रही हूँ या देह समझ कर अहंकार वश कर्म कर रही हूँ। ज्ञान बहुत छोटा सा है। जैसे बाबा कहते हैं ना, वेद शास्त्र तो बाद में बड़े बड़े बनाएंगे, गीता बड़ी बनाएगी। असल में गीता बहुत छोटी लिखी हुई थी। उसी प्रकार से ज्ञान बहुत छोटा है। एक आधे घंटे की क्लास में भी खत्म हो जाएगा सारा ज्ञान। लेकिन विस्तार से क्यों समझाना पड़ता है? क्योंकि हम उठा नहीं पा रहे ठीक से। ज्ञान इतना ही है कि मैं आत्मा हूं, और यहां से सारा ज्ञान शुरू हो जाता है। वो भी करने की आवश्यकता नहीं, ज्ञान है तो अपने आप शुरू हो जाता है, क्योंकि जहाँ आत्मिक पाठ पक्का हो गया वह बाकी का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान अपने आप आ जाता है। जैसे लास्ट क्लास में भी हमने सुना कि आत्मा समझकर अगर जबरदस्ती विकर्म करना भी चाहिए तो भी नहीं हो रहा। आत्मा समझकर किसी को गाली देना भी चाह तो नहीं निकल रही। आत्मा समझकर किसी के लिए बुरे संकल्प भी चलाए नहीं चल रहे। अगर इतना अच्छा ज्ञान हमें पता है तो आत्मा समझकर क्यों नहीं करते। आज हम सभी से एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, आपकी इस आध्यात्मिक यात्रा में परमात्मा के साथ क्या आपने ऐसा कोई दिन बिताया है जिस दिन में कम से कम अपने को 8 घंटे के लिए आत्मा समझा है? नोटिस कीजिए, योग अभी दूर है, योग में नहीं जा रहा। 8 घंटे के लिए बस अपने आप को आत्मा समझा है, चेक कीजिए। क्योंकि क्या हो रहा है, आज ज्ञान को सुन रहे हैं, सभी से सुन रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन नहीं है, फायदा नहीं उस ज्ञान का। इतना भी सुन लीजिए परिवर्तन नहीं होगा, तो थोड़ा सुन लीजिए, उसको अप्लाई कर लीजिए अपने ऊपर, परिवर्तन 100% होगा। ऐसे नहीं कि रोज बहुत सारी क्लासेस होनी चाहिए, बहुत सारी क्लासेस सुननी चाहिए, कुछ नहीं। एक क्लास भी सुनी, उसमें से थोड़ा भी अप्लाई किया तो भी कंप्लीट होगा। मुरली का एक सेंटेंस भी अप्लाई किया अपने ऊपर तो भी हम कंप्लीट होंगे। लेकिन एप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है। सुनना और सुनाना इसमें मजा, ये तो 2500 साल से यही चलता आ रहा है, सुनते और सुनाते आ रहे हैं। अप्लाई होना बहुत जरूरी है, हमें देखना चाहिए। अगर हम दूसरों को कहते हैं कि यहाँ आत्मिक स्थिति का पाठ पढ़ाया जाता है, तो पहले हमें देखना चाहिए। और आत्मिक स्थिति का लक्षण है, आपसे कोई दुर्लक्षण नहीं निकलेगा, यही आत्मिक स्थिति का लक्षण है। गलत कर्म नहीं होगा, एक भी गलत बोल कर्म और संकल्प नहीं निकलेगा। अगर निकल रहा है तो हमने ही पाठ पक्का है, तो हमें पाठ पक्का करना पड़ेगा। इसमें बहुत सुख है, आत्मिक स्थिति में परम सुख है अंत। और अभी की जो आत्मिक स्थिति है और सतयुग की आत्मिक स्थिति बहुत डिफरेंस है। कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले बाबा ने बोला ना कि सतयुग में भी आत्मा का ज्ञान रहता है, लेकिन वहाँ परमात्मा का ज्ञान है, इसलिए ड्रामा का ज्ञान समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ की आत्मिक स्थिति ऐसी है, या परमात्मा का ज्ञान है, ड्रामा का ज्ञान है, कर्मों का ज्ञान है, सब कुछ है। तो आत्मिक स्थिति में आने के बाद सारी बातें अगर क्लियर होती हैं तो आना चाहिए। आप समय निकालो, अपने लिए समय निकालो, समय निकाल कर आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करो, इसके बिना कुछ नहीं होगा। हम तो यही कहेंगे कुछ दिनों के लिए आत्मिक स्थिति के ऊपर ही अटेंशन रखो, कुछ दिनों के। देखो जैसे आत्मिक स्थिति बढ़ती जाएगा, अभी 1 सेकंड के लिए आत्मा समझा, अगला सेकंड आपका अलग होगा जीवन का, अगला और 1 सेकंड समझा, उससे अगले 2 सेकंड अलग होंगे। मतलब आपने आज आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया, न सिर्फ आज का दिन बल्कि कल का दिन भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन कंटिन्यू करना चाहिए, जैसे कंटिन्यू करते जाएंगे फिर आप मतलब उस यात्रा के अंत तक पहुंच जाएंगे जिस यात्रा की हमने शुरुआत की है। आज कैसे हैं, सभी को सभी बातों का ज्ञान तो बहुत है, बहुत है हर किसी के पास, लेकिन खुद का ज्ञान नहीं है। और जिसके पास खुद का ज्ञान नहीं है, हम यही कहेंगे, किसी को बुरा भी लगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। हम यही कहेंगे जिसके पास खुद का ज्ञान नहीं है वो कंप्लीट अज्ञानी है। बाकी आप कितना ज्ञान सुन रहे हो वजन न कर, हमें ज्ञान में आना है तो ज्ञान समझना पड़ेगा। अप्लाई नहीं किया, अनुभव नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे बहुत सुनते हैं, हम यही कहेंगे जितना आप सुनते हैं सभी सुनी सुनाई किताबों की बातें हैं, वो उनके अनुभव है। जो आपको सुना रहा है वो उनके अनुभव है, आपको आपके अनुभव बनाने पड़ेंगे, वही आपका ज्ञान है। किसी ने बात सुनाई, चलो हेमंत भाई जी ने ऐसे सुनाया, आपने किसी को कहा, वो उतना उसको तीर नहीं लगेगा जितना आप अनुभव करके उस बात को सुनाएंगे। सूरज भाई जी ने कुछ सुनाया, कुछ विधि बताई, उसको अगर आप अनुभव करके किसी को बताएंगे तो उस बताने में, उस अनुभव में ही सारी ताकत जाएगी और सेकंड में तीर लग जाएगा। जैसे शिवानी जी की तरफ से कुछ आया, किसी की तरफ से भी कोई भी ज्ञान की विधि, दादियों ने कुछ कहा, लेकिन उसको अगर आप अनुभव करके किसी को सुनाते हैं तो पूरा उतर जाएगा। बिना अनुभव के जो भी हम सुनाएंगे, जैसे कि वो रटी रटाई बातें होंगी, फायदा नहीं, कुछ भी नहीं होगा उससे। इसलिए हर बात का आप अनुभव करो। जीवन में आज आप हर प्राप्ति पाना चाहते हैं, लेकिन पाने का एक ही सूत्र है, अपने आप में आ जाना। आज हर इंसान हर चीज को पाने के पीछे अपने आप को खो दिया है, अपने आप को खो गया है इस संसार में पाने के चक्कर में। आज भी पाना चाहता है, बाबा कहते इच्छा मात्रम अविद्या, लेकिन सच कहें ये स्लोगन हमारा है, इच्छा मात्रम अविद्या। सबसे ज्यादा इच्छा हम ही रखते हैं परमात्मा मिलके भी, सबसे ज्यादा। अगर परमात्मा मिला है तो इच्छा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप कहते हो कि परमात्मा शिवैया है हमारी नाव का, वही हमारी नाव चला रहा है, तो फिर इच्छा का है उसको जहाँ लेके जाने लेके जाने दीजिए, उसकी मर्जी है। आपको निश्चय है कि वो सही ठिकाने पर पहुँचाएगा, तो सब बैठ जाए उस नाव में अच्छे से। निश्चय को नहीं लाएंगे, निश्चय सबसे बड़ी चीज है, निश्चय में सारी प्राप्तियाँ हैं। जिस दिन आप आत्मिक स्थिति के निश्चय में आ जाएंगे कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा की सारी प्राप्ति आपके पास है। उन प्राप्तियों को लेकर, मतलब उस निश्चय को लेकर, जैसे आप इस निश्चय में आएंगे कि परमात्मा ही सब कुछ है, वही हमारा गॉडफादर है, वही हमें पढ़ा रहा है, बाप टीचर सतगुरु बनके परमात्मा प्राप्तियाँ सारी हो जाएंगी। आज हम सब कहते हैं पाना था सो पा लिया, बाकी क्या रहा। हम कहते हैं पाना था सो कुछ नहीं पाया, बाकी सब कुछ रहा है अभी तक में, क्योंकि बस ये कहने के लिए कहते हैं। हर कोई कहता है, कहने के लिए कहता है। आप नोटिस करके देखो, अपने आप को भी चेक करके देखो, बस सुनाने के लिए, कहने के लिए कहते हैं पाना था सो पा लिया। अगर पा लिया, हम कहेंगे अगर आपने पा लिया तो आपके मन में एक भी इच्छा नहीं रहेगी, एक भी इच्छा। अगर इच्छा रहती है तो पाया नहीं। तो सबसे बड़ी बात अपने आप को पाना, क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं पाते, बाप को नहीं पा सकते। बाप को पाने से पहले स्वयं की शुरुआत, अपने आप को पाने की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आज से, जैसे कि हम एक अलग पुरुषार्थ, यही ज्ञान का ही सबसे पहला पाप, उसे पक्का करेंगे, उसके बगैर आगे बढ़ने में मजा नहीं, और बढ़कर भी कितना बढ़ेंगे एक समय पर लौट आएंगे, क्योंकि आपके पास वो पावर नहीं है। आत्मा के पास ही पावर है सबसे आगे बढ़ने की। नाम रूप को लेकर कितना आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ सकते। आज एक स्टेटमेंट करते आप सबके लिए, आप मुरली सुनते हैं रोज या पढ़ते हैं, ठीक है? क्या आप मुरली पढ़ते हैं? चेक कीजिए, आप मुरली सुनते या पढ़ते हैं? चेक कीजिए। एक एक शब्द आप नहीं सुनते हो, कौन सा आप? आत्मा हो। जिस दिन आप आत्मा पूरी मुरली को सिर्फ एक बार आप सुनोगे, देखना क्या होगा, ट्राई करके देखिए। एक एक शब्द सिर्फ आप सुनोगे, आप आत्मा, एक मुरली कमाल कर देगी आपके दिन की, करके देख लीजिए ट्राई। क्योंकि क्या हो रहा है, मुरली को सुनने बैठते हैं या फिर पढ़ने बैठते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उसके ऊपर आत्मिक स्थिति का टेंशन नहीं होता, बस पढ़ना है, इसलिए पढ़ते जाते हैं। बाबा ने साकार में या अव्यक्त में जो मुरलियां चलाई, उसका भाव अगर आपको पकड़ना है, शब्द एक ही होता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं, भाव के अनुसार अर्थ अलग अलग निकलते हैं। तो बाबा ने उस समय में साकार में जो जो शब्द कहे हैं, उसका भाव अगर आपको पकड़ना है तो आप मुरली सुनिए या पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा कि बाबा ने इस शब्द में कौन सा भाव डालकर इस शब्द को उच्चारा है मुरली की। फिर वो सारी मुरली धारणाओं के रूप में अंदर उतर जाएगी, धारणाएं करनी नहीं पड़ेगी। आज धारणाएं करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, योग लगाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कारण उस शब्द उनका भाव बाबा ने जो उच्चारा है वो उतर नहीं रहा। बाबा बहुत बार कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तो जब एक एक शब्द को आप सुनते हो चेक करो कौन सुन रहा है, अगर ये सुनेगा अंदर नहीं जाएगा। जैसे ही आत्मा सुनेगी, आप सुनेंगे बच्चे मुझे बोला, अपने को आत्मा समझ कर मुझे याद कर, मतलब एक वर्ड एक सेंटेंस को भी ले लेते हैं ना योग हो जाए। ऐसे कितने सारे सेंटेंस बाबा मुरली में कह रहे हैं। मुरली सभी खजानों का सार है, सभी खजानों का। बस उस भाव को पकड़ने के लिए अपने आप को पकड़ना पड़ेगा। हम अपने आप से छूट रहे हैं इसलिए सब कुछ हमसे छूट रहा है। आज हर बात को हम पकड़ना चाहते हैं, पुरुषार्थ को पकड़ना चाहते हैं, धारणाओं को, ज्ञान को, सेवाओं को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे, क्योंकि जिसे पकड़ना है उसे नहीं पकड़ना है, बाकी सबको पकड़ना चाहते हैं। इसलिए आज से बहुत बार क्लास में यही होता है, बहुत से आत्माएं कहती है कि आत्मिक स्थिति के ऊपर लंबा क्लास चलता है, कहना यही है आत्मिक स्थिति नहीं होगी तो बाकी लंबा नहीं, कितना भी लंबा और चौड़ा भी क्लास हम चलाए उसका कोई फायदा नहीं जब तक आत्मिक स्थिति पक्की नहीं है। तो आत्मिक स्थिति को पक्का करने के लिए आत्मिक स्थिति पर ही क्लास होना बहुत जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर किसी को लगता है कि इसके बिना अगर हो सकता है देन हम भी बहुत खुश होंगे कि हमें भी बहुत अलग तरीके की विधियाँ मिलेंगी कि आत्मिक स्थिति के बिना आगे बढ़ सके, नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा समझ के आप उन्हें एक समय निकाल के, कुछ दिनों के लिए समय निकाल के चेक कीजिए, हर चीज हर सांस क्या आप ले रहे हो नोटिस कीजिए, आपकी सांसें भी आपके नहीं है क्योंकि आप नहीं ले रहे, अवेयरनेस नहीं है आपको कि आपकी सांसें आप ले रहे हो, आप जो खा रहे हो वो भी आपका नहीं है भोजन क्योंकि आप नहीं खा रहे, जो पहन रहे हो वो भी आपका नहीं, जो बोल रहे हो वो भी शब्द आपके नहीं, जो सोच रहे हो वो सोच भी आपकी नहीं है क्योंकि आपका मन सोच रहा है आप नहीं सोच रहे, मतलब बाबा कहते हैं ना कंप्लीट परवश। तो आत्मिक स्थिति में आने के बगैर हम स्व के वश नहीं हो सकते, परवश कितना रहेंगे। अब सोचिए भोजन भी अनकॉन्शियसली खा रहे हैं, पता नहीं उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट है, बस खाते जा रहे हैं। बहुत बार सुना है दृष्टि देके भोजन को खाना है, एक मिनट तो बहुत अच्छी दृष्टि, बाद में कहाँ दृष्टि कहाँ सृष्टि, बस भोजन। तो कहना यही है हर चीज को आप एक्सपीरियंस करो, आत्मा समझ लो, आप अपने आप को टच भी कर रहे हो आत्मा समझ लो, एक्सपीरियंस करो। आप किसी चीज को देख रहे हो तो मैं आत्मा आंखों द्वारा देख रही हूँ, ये सारे अनुभव हैं, मतलब ये जब तक आप आपके जीवन में नहीं लाएंगे योग नहीं हो पाएगा, न ज्ञान समझ में आएगा, न योग होगा, न धारणाएं होगी, न सेवा होगी, कुछ नहीं होगा। बस अपने आप को समझ में लाओ फिर सब कुछ समझ में आ जाए, सारा खेल खुद से शुरू होता है और खुद पर ही खत्म होता है। तो कुछ भी हो जाए अपने आप को अपने आप में लाना है, कैसे भी करके आप ऐसी स्थिति का अनुभव करेंगे कि आप चाहते हुए भी अपनी स्थिति नहीं छोड़ेंगे, इतना आनंद मिलेगा आपको। अब जहां से भी जाएंगे सफलता आपके साथ चलेगी, सफलता आपके साथ चलेगी। बाबा मुरली ने बहुत बार याद प्यार देता है, अव्यक्त मुरली का याद प्यार सभी ने सुना है। बाबा कहते हैं सफलता मूर्त विश्व महाराज ताज और तख्त नशीब, इन सभी आत्माओं को याद प्यार। तो हमने चेक करना चाहिए क्या उस याद प्यार में हम बैठते हैं, उनमें से एक भी टाइटल हमारे पास है अभी भी? अगर टाइटल नहीं है तो उस याद प्यार में हम नहीं बैठते हैं, क्योंकि बाबा ने याद प्यार किसको दिया? दिल तख्त नशीन को दिया, विश्व महाराजन आत्माओं को दिया, सफलता मूर्त आत्माओं को दिया। देखो संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दिया, क्या हम उस कैटेगरी में बैठते हैं? चेक कीजिए हम मना आते हैं। जैसे ही आत्मिक स्थिति में आ जाते हैं उस कैटेगरी में अपने आप बैठ जाते हैं, क्योंकि वो याद प्यार सच में महसूस होता है। आज बस सुबह में हम सुनते हैं बाबा का याद प्यार, लेकिन वो महसूस का नहीं आती कि परमात्मा का याद प्यार है, हमारे पिता का याद प्यार है। रोज सुन रहे हो उसको, क्यों नहीं महसूस आती? क्योंकि जो सुनना चाहिए जिसे वो नहीं सुनता, शरीर सुनता। जिस दिन आत्मा सुनेगी अब देखिए कमाल होता है। इसलिए हम बार बार यही कहते हैं आप जीवन का जो भी समय जहाँ भी जिस स्थिति में भी व्यतीत कर रहे हो, नौकरी है, बिजनेस है, घर है, जो भी है, उसमें आप व्यतीत कीजिए। आपका समय अगर कोई और ले ले आपको अच्छा लगेगा? नहीं लग सकता। आपका समय अगर किसी और ने लिया तो आपको अच्छा नहीं लग सकता, कारण क्योंकि वो आपका समय है। तो आप चेक कीजिए क्या आपका समय आप ही जी रहे हो तो कोई और जी रहा। बाबा बहुत बार कहते हैं मुरली में कि बच्चे अगर भोजन पर तुम्हारा अटेंशन नहीं तो तुम्हारा भोजन माया खा जाता है। माया का खाना माना क्लास में भी हुआ है, आपने सुना होगा शायद से। माया का खाना माना जब आपका अटेंशन नहीं होता भोजन के ऊपर तो आप बॉडी कॉन्शियसनेस में आए, बॉडी कॉन्शियसनेस में भोजन को खा रहे तो आपकी बॉडी खा रही, आप नहीं खा रहे। इसको कहा जाता है माया का खाना, माया खाती है उसे। और अगर उसके साथ माया बहुत स्ट्रांग है, भोजन के साथ शरीर अभिमान देहाभिमान बहुत स्ट्रांग है, तो ये भी चांसेस है कि आपके थाली में जो अच्छे अच्छे पदार्थ हैं जो आपको पसंद है, वो जिन आत्माओं को पसंद है जिनको अपना शरीर लिए है, वो भी आपके शरीर में आकर खाकर चले जाते हैं। हाँ, इसीलिए अगर आप नहीं खाते हो तो आपका भोजन कोई और ही खाकर चला जाता है, या तो शरीर खाता है या फिर दूसरी आत्माएं खाकर चली जाती है, क्योंकि आपको अटेंशन नहीं कि आप खा रहे हैं। तो अपने आप को चेक कीजिए हर समय। हम कहेंगे जिसका भोजन के ऊपर अटेंशन बहुत है वो आत्मिक स्थिति में बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। बस 15 मिनट या 20 मिनट लगते हैं भोजन को, 10-15 मिनट नाश्ते को, शाम की चाय 10-15 मिनट, रात का भोजन 15-20 मिनट, बस इतना सा समय भी अगर आप निकालते हैं, एक एक निवाला अगर आप खाते हैं तो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस आपको मिल जाए, तीनों भी मिले। उसका साइंटिफिक रीजन भी आपको बताते हैं। फर्स्ट ऑफ आप जो सांस ले रहे हैं, सांसें हम लेते हैं, कौन सी स्थिति में सांसों को अंदर ले रहे हैं उस अनुसार आपका शरीर चलेगा। अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में है और सांसें चल रही है तो सांसें आपका नुकसान करने वाली है। क्यों करेंगी नुकसान? कारण एक ही है कि वो सांसें ऐसी जा रही है, ऑक्सीजन इस प्रकार का जा रहा है जो तमो प्रधान हुआ है, क्योंकि आपका टेंशन है। दूसरी बात, तो तमो प्रधान ऑक्सीजन भी जा रहा है, और दूसरी बात आप अगर तमो प्रधान स्थिति में है तो जाने वाले उस ऑक्सीजन को भी और तमो प्रधान बना रहे हैं। आपके हर एक सेल में ऑक्सीजन उतरता है, हर एक सेल में, तो अब जिस कॉन्शियसनेस में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं वही कॉन्शियसनेस हर एक सेल में उतरता है, फिर हम कहते हैं कि बीमारी होगी। आज दुनिया की हम कहेंगे सभी बीमारियों का इलाज सांसों से होता है, सांसों के ऊपर कंट्रोल करके सभी बीमारियों को ठीक करते हैं। कारण उस समय जो सांस लेते हैं वो कॉन्शियसली लेते हैं, भले आत्मिक स्थिति का अभ्यास नहीं लेकिन सांस के ऊपर अटेंशन। कहना यही है, हम कहते हैं कि जीवन शारीरिक रूप से बिगड़ रहा है, कारण देही अभिमानी स्थिति का ना होना, बॉडी कॉन्शियसनेस में चलना। बॉडी कॉन्शियसनेस में जितनी सांसें चलती हैं उतनी आयु कम होती है, और सोल कॉन्शियसनेस में जितनी सांसें चलती हैं उतनी आयु बढ़ती है, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाता है सोल कॉन्शियसनेस में। सेम सिचुएशन हम भोजन की बात कर रहे हैं, जो निवाला आप खा रहे हैं कौन से कॉन्शियसनेस में, उसके हमने स्टार्ट की जर्नी, अपने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, कौन सी स्थिति में तोड़ दिया उसको, फिर सब्जी उठाई कौन से विचारों में, फिर मुंह में डाल दिया कौन से विचारों में, चबा रहे हो कौन से विचारों में, अंदर धकेल दिया कौन से विचारों में, जिन विचारों में वो एक निवाला अंदर उतर गया वही एनर्जी आत्मा से उसके उस निवाले के अंदर चलेगी और वही एनर्जी आपके शरीर को ड्राइव कर लेगी। तो जितने भी डिजीज हुए हैं दुनिया में कारण एक ही है कि आप कॉन्शियसली सोच समझ के उसको खा नहीं रहे, सेवन नहीं कर रहे, बस शरीर समझ के करके देखिए। जो भी आपका भोजन है बस आप आत्मा, शुरू शुरू में आपको 15 मिनट से आधे घंटे तक का समय लगेगा भोजन करने में, आधा घंटा भी लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आप अनुभव करते जाएंगे कि आपके शरीर में बहुत बदलाव होते जा रहे हैं। छोटे छोटे प्रयोग लेंगे जैसे करते जाएंगे ना आप अनुभव करेंगे जीवन बदलता जा रहा है। मैक्सिमम हम देखेंगे थाली में कितने निवाले होते हैं, 25 से 30 मैक्सिमम बोल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 निवाले भी इनफ हो जाते हैं भोजन के लिए, रोटी के और चावल के जो भी हैं। तो इतने निवालों को 20-25 निवालों को हम आत्मा समझ के नहीं खा सकते, लेकिन अगर आत्मा समझ के खाते हैं चबाते हैं तो बहुत गहराई वाले हैं। आप महसूस कीजिए क्या क्या जीवन परिवर्तन हो रहा है, न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक अवस्था भी बदल जाएगी। करके देखिए आत्मा समझ के भोजन को खाना, ऐसे हर बात आत्मा समझ के करना है, हर बात जीवन की कोई भी बात अगर आप लिख भी रहे तो आत्मा समझ, सुन भी रहे आत्मा समझ के, बोल भी रहे आत्मा समझ, फिर देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। इस क्लास में छोटे से डिस्कशन में हमें यही पाठ पक्का करना है आत्मा का, क्योंकि बाकी के सारे पाठ तो अपने आप हैं। बहुत से आत्माएं कहते हैं कि भाई जी आप योग के ऊपर क्लास कम कराते हो और ज्यादा से ज्यादा आत्मिक स्थिति के ऊपर, हमारा कहना यही है आत्मिक स्थिति होने के बाद हमें योग के ऊपर क्लास करने की जरूरत ही नहीं, आपका योग अपने आप हो जाए, हमें जरूरत ही नहीं क्लास करने की। तो जो सबसे बड़ी बात है उसी को करना जरूरी है, क्योंकि हम जो है उसमें आना बहुत जरूरी है। आप हर बार चेक कीजिए, कोई भी सेवा है सेंटर पर सेवा करते जहां भी सेवा करते चेक कीजिए कि आत्मा समझ के सेवा कर रहे हैं या शरीर समझ के कर रहे हैं, आत्मा समझ के कर रहे हैं वो भी निस्वार्थ भाव से या शरीर समझ के कर रहे हैं दिखावे के लिए कि मैं सेवा कर रही हूँ, मैं ज्ञान दे रही हूँ, मैं मुर्गे सुना रही हूँ या मैं मुर्गे सुना रहा हूँ, मैं वहाँ की जो कर्मणा सेवा हूँ वो कर रही हूँ, जो भी है मतलब क्या है इसमें। हर कर्म में आपको चेक कीजिए क्या आपका हर कर्म आपके संतुष्टि के लिए है या दूसरों के दिखावे के लिए, आपका हर कर्म। क्लास में भी बैठते हैं हम, क्या जो क्लास कराने के लिए आए हैं या मुरली सुनाने के लिए गुरु जी सामने बैठे हैं उनको अच्छा लगे इसलिए हम बैठे हैं, या हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है इसलिए हम बैठे हैं। बहुत बार देखा गया है 99% बार हम हर कर्म दूसरों के लिए करते हैं।
तो
योग करना ही है। हम क्या कर रहे हैं कि आत्मिक स्थिति में,
आत्मिक स्थिति में रहिए तो सब योग का इतना जरूरी
नहीं। योग का जरूरी है, योग का जरूरी है। हम ये कह रहे थे आत्मिक स्थिति में रहने के बाद योग अपने आप हो जाता है, क्योंकि आत्मा के लिए परमात्मा के सिवा दुनिया में कोई है नहीं। आत्मा इन चीजों का जो भी उपभोग लेती है, अगर आत्मिक स्थिति में रहकर लेती है तो उसको जितनी आवश्यकता है वो अपने आप लेती है, उतना ज्यादा नहीं। तो आत्मा समझने के बाद क्या होता है, ज्ञान योग धारणा और सेवा अपने आप हो जाते हैं आत्मा समझने के बाद। आज हम इतने साल से मेहनत कर रहे हैं योग करने की, लेकिन जितना समय योग में बैठते हैं उसके बाद योग खत्म। योग से जैसे उठे उसका आधा एक दो घंटा प्रभाव रहता है, उसके बाद नॉर्मल होते हैं। लेकिन आत्मिक स्थिति में रहकर अगर आप योग करते हैं तो प्रभाव बड़ा लंबा जाता है, क्योंकि आत्मा ने पकड़ लिया उसको आत्मिक स्थिति में रहकर। तो योग के समय भी हमें चेक करना है, क्या जो हम योग कर रहे हैं दूसरे बैठे हैं उनको दिखाने के लिए कि मैं भी बैठा हूँ, या अपने आप के लिए। आप अपने आप के लिए कर्म करो, अपने आप के लिए जियो, दूसरों को क्या लगेगा मत सोचना, क्योंकि सारा जीवन दूसरे के सोचने में ही चला गया है। सारा जीवन आप सोचिए दूसरे के सोचने में ही चला गया, कब खुद के बारे में नहीं सोचा है। तो कहना यही है मुझे क्या लगेगा, 5 मिनट योग करने के बाद ये आप सोचिए, मुरली सुनने के बाद मुझे क्या अनुभव होगा ये आप सोचिए, मैं बैठी हूँ उनको कैसे लगेगा, डजंट मैटर। आपकी पढ़ाई है, हर एक की अलग अलग अपनी अपनी पढ़ाई है। तो कहना यही है आत्मिक स्थिति में आने के बाद सारी बातें अपने आप होती है, करना नहीं पड़ता। फिर से बोलिए जितने सारे प्रयोग सुनाए अपने क्लास में भी बहुत बार सुने, अगर आप आत्मिक स्थिति में रहते हैं और सब्जी भी खरीदने जाते हैं तो अपने आप आपके सारे कार्य होते हैं, सब्जी भी अच्छी लेके आते हैं। सब्जी काट के देखिए आत्मिक स्थिति में रहकर, आत्मिक स्थिति में हाथ से सब्जी कट रही है, आपका लक्ष्य सब्जी के ऊपर, लक्ष्य आंखों से होता है, ध्यान आत्मा से होता है, लक्ष्य और ध्यान दो बातें हैं। तो आंखों से लक्ष्य इधर उधर है कोई बात है, लेकिन ध्यान आत्मिक स्थिति में आपके हाथ से जो सब्जी कटेगी सबसे बढ़िया कटेगी, और सब्जी में अगर कोई खराब भाग है अपने आप साइड में हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि आत्मिक स्थिति में आने के बाद सभी बातों का अवेयरनेस आ जाता है, आसपास क्या हो रहा है, मतलब आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, उन बातों में आप इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन आपको समझ में आता है कि आपके आसपास क्या चल रहा है। आपका मन उसके अंदर उससे संबंध में नहीं रहता उन बातों के, आप आपके पास ही रहते हैं लेकिन समझ में आता है। इसके कारण क्या होता है, हर बात एक्यूरेटली होती है। तो जितना हो सके आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना पड़ेगा, कुछ दिन निकालिए। अभी हम कहते हैं छोटी सी बात, इतने साल से कोई 5 साल 10 साल 2 साल 3 साल इतने साल से आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर भी आपके मन में जो दृढ़ संकल्प चल रहा है कि इस अवस्था को प्राप्त करना है वो तो नहीं हो पा रही। हर किसी को इस अवस्था को प्राप्त करना है जिस अवस्था में उनसे मेहनत छूट जाए, सारे काम अपने आप हो जाए, और दूसरी बात परिवार भी सुखी रहे, खुद भी सुखी रहे, सारा समाज सुखी रहे, इस अवस्था को प्राप्त करना है। लेकिन कैसे प्राप्त करेंगे, जब अपने आप को प्राप्त करें। जब तक अपने आप को प्राप्त नहीं किया है तो आपको जो प्राप्त होना है आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपको चाहिए और आप ही ठिकाने पर नहीं है। अगर किसी ने आपको कोई चीज कुरियर की है, आपकी पोस्ट, आपके घर को ताला है, कोई नहीं आपके घर में, तो वापस लेके जाएगा। तो आप जब ठिकाने पर होंगे तो आई हुई चीज अपने आप आपको मिल जाएगी, सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे कहेंगे कि प्राप्तियां आपकी परछाई है, प्राप्तियां आपको छोड़कर कहां नहीं जाती, आपके साथ ही चलती सारी प्राप्तियां देना है, बस क्या है कि हम प्राप्तियों की तरफ देख रहे हैं, इसके कारण न खुद के तरफ ध्यान है न बाबा के तरफ ध्यान है। बाबा सामने है सूरज के रूप में, हम खड़े हैं बाबा के सामने, बाबा को देख रहे हैं आत्मा, और परछाई पीछे है प्राप्तियों के रूप में। तो अगर हम प्राप्तियों को देखने जाएंगे तो खुद से भी मुख मोड़ेंगे और बाबा से भी मुख मोड़ेंगे। तो बस खुद के ऊपर ध्यान रखो, बाबा के ऊपर ध्यान रखो, प्राप्तियां आपके पास आपके साथ चलती जाए। दुनिया में बहुत से लोग सिखाते हैं कि आपको जो चीज चाहिए, जो चीज चाहिए जीवन में, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, नाम मान शान चाहिए, जो भी चीज चाहिए, अच्छा शरीर चाहिए, प्रकृति से मांगिए। पर कोई सिखाता है मांगो प्रकृति से, संकल्प दे दो प्रकृति को। हम कहते हैं कि आपको जो आवश्यकता है, क्या वो आपको और प्रकृति को पता नहीं कि आपको क्या चाहिए? इसको गहराई से समझ लीजिए। आत्मा को जितनी आवश्यकता है वो बिना मांगे मिलती है आत्मा को। शरीर की जितनी आवश्यकता है 5,000 साल भी मांगे तो भी नहीं मिलेगी, मिलेंगी तो भी पूरी मिलेगी, इसकी गारंटी। तो आपकी आवश्यकता बिना मांगे पूरी होती है, इसलिए बाबा कहते हैं कि मांगने से मरना बना। प्रकृति से मांगो, आत्माओं से मांगो, या फिर परमात्मा से मांगो, मांगने वाला वही होता है। मांगने वाला हमेशा मांगने वाला ही होता है, फिर वो किसी से भी मांगे, परमात्मा से मांगे, प्रकृति से मांगे, या आत्माओं से मांगे। आपको हर चीज उपलब्ध हो जाएगी, जो चाहिए वो मिल जाएगा, बस आप अपने आप को उपलब्ध हो जाओ। जैसे आप अपने आप को उपलब्ध हो जाओगे सब कुछ आपका मिल जाएगा अपने आप बिना मेहनत के। इसलिए हम कहते हैं कि मेहनत करनी नहीं पड़ती, मेहनत करके जो मिलता है वो भी मेहनत दिलाता है, हमेशा मेहनत दिलाता है। जैसे कि देखिए, बहुत बार ये भी बात आपने सुनी होगी, फिर से रिपीट करते हैं, कोई बच्चे हैं, अभी बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो गए, बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं, उनकी जब एग्जाम चलती है, बच्चों को पढ़ाई के लिए बिठाते हैं, जिनको 99% निकालने हैं, 90% निकालने, 95% निकालने, रात दिन जग कर पढ़ाई करते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस कौन सा है? स्ट्रेस। नोटिस कीजिए, वह स्ट्रेस वाला कॉन्शियसनेस है, तनाव में आकर वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, रात दिन आंसर को लर्न कर रहे, एंजॉय नहीं कर रहे। 99.99% बच्चे दुनिया में स्ट्रेस में ही पढ़ाई कर रहे, फिर वो छोटे छोटे बच्चों की हो या हायर एजुकेशन है, स्ट्रेस में ही होती। तो देखिए, उस बच्चे ने उस आंसर को लर्न किया, जब आंसर को लर्न किया तो कॉन्शियसनेस था स्ट्रेस वाला, स्ट्रेस वाला कॉन्शियसनेस था, लर्न तो हो गया। जब आंसर शीट पर लिखा एग्जाम में लिखने के बाद वो चला गया चेक करने के लिए, जब चेक हुआ तो उसको मार्क्स तो मिले, लेकिन मार्क्स किसको मिले पता है आपको? उन शब्दों को कम, एनर्जी को ज्यादा मिले। उन शब्दों में कौन सी एनर्जी आपने डाली है? स्ट्रेस वाली थी, बच्चे ने स्ट्रेस में आकर पढ़ाई की, वो आंसर लिखे तो आंसर को लिखे वर्ड तो आए, लेकिन उस वर्ड में स्ट्रेस है, रात भर स्ट्रेस में आकर लर्न करना पड़ा। बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ, जो मार्क्स आए 2 मार्क्स 4 मार्क्स 10 मार्क्स, उसमें भी क्या भरा हुआ है? स्ट्रेस। एनर्जी को मार्क्स दिए, वर्ड्स को कम। अभी वही मार्क्स जब स्कोर कार्ड पर आते हैं, किसी बच्चे को 99% मार्क्स मिलते हैं, दिखते हैं उसके स्कोर कार्ड के ऊपर, तो उसको खुशी कम स्ट्रेस ज्यादा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है 99 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, रात दिन के लिए कितना स्ट्रेस उठाना पड़ा। देखिए लाइफ कैसे ड्राइव होती है हमारी, तो वो 99 जब देखता है खुश कम होता है, लेकिन तनाव ज्यादा पैदा होता है उसका, क्योंकि वो मार्स में तनाव ही भरा हुआ है, वो एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहा है वहां से। उसके बाद वही स्कोर कार्ड आगे चला गया जॉब के लिए, तो जब उसको जॉब मिली, अच्छी कुर्सी मिली, किस बेस के ऊपर मिली? 99%। लेकिन उसमें क्या है? स्ट्रेस। तो जिस कुर्सी पर बैठेगा देयर इज ऑल्सो स्ट्रेस। अब नोटिस कीजिए जीवन कैसे चलती है। फाउंडेशन अगर बिगड़ गया तो उस कुर्सी पर बैठता है वहां भी उसका जो समय है जॉब का उस अनुसार वो जॉब करता रहता है, लेकिन वो तनाव भरा जॉब रहता है। अब देखिए दुनिया के मैक्सिमम तनाव भरे जॉब हायर इंटेलिजेंट पर्सन को ही है, तनाव है बिजनेसेस और जॉब, क्योंकि उनके जो स्कोर है उसके अंदर वो स्ट्रेस है। जिस कुर्सी पर बैठे हैं स्कोर के कारण इस कुर्सी में स्ट्रेस है। कुर्सी में बैठकर दिन भर में जितना काम किया, महीना भर में जितना काम किया, उससे जितनी इनकम जनरेट हुई, जो भी पगार मिला 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख महीने का, करोड़ मिले, तो कहाँ से निकले? उस कुर्सी पर बैठकर जो काम किया उससे आए। लेकिन उस काम में तो ऑलरेडी था स्ट्रेस, तो तनाव लेकर अपने 8-8 घंटे रोज के बिताए, तो जो इनकम जनरेट किया उसमें भी क्या है? स्ट्रेस। अभी वो इनकम जब आप स्पेंड करेंगे किसी घर के लिए, गाड़ी के लिए, आपके परिवार के लिए, देयर इज ऑल्सो स्ट्रेस, बिकॉज फ्रॉम स्टार्ट टू एंड यू आर नॉट एक्सचेंजिंग एनीथिंग, ओनली यू आर एक्सचेंजिंग द स्ट्रेस। आप सिर्फ तनाव को ही एक्सचेंज कर रहे। इसलिए बहुत बार हम यही कहते हैं, कोई भाई या माताएं जॉब पर जाती है, जब आप महीने भर की सैलरी लाते हो और घर का जो कोई मुख्य है उसके हाथ में देते हो, तो उस समय गलती से भी नहीं कहना कि 10,000 ले लो, इसमें गैस देखना है, लाइट देखना है, बच्चों की पढ़ाई देखनी है, ट्यूशन देखना है, पानी बाजार देखना है, गलती से भी नहीं कहना, क्योंकि आप क्या कर रहे हो इसमें ऑलरेडी स्ट्रेस दे रहे हो उनके साथ एक्सचेंज कर रहे हो। तो फल ही क्या मिलेगा आपको अगर आप डी स्ट्रेस वाला डाल रहे हो? तो स्ट्रेस ही मिलेगा। उस पैसे से जो भी खर्च करेंगे ना, घर में गैस भी आया, गैस जितना जलेगा जो जो पकाएगा उसमें भी स्ट्रेस। हर चीज फाउंडेशन अगर गलत हो गया तो सब कुछ बिगड़ जाता है फाउंडेशन। इसलिए कहते हैं ना आज बड़ी बड़ी इमारतें जब बनाते हैं तो फाउंडेशन अच्छा चाहिए। बल ऊपर 2 माले कम हो है चलेगा, लेकिन फाउंडेशन अच्छा चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग बहुत देर तक अच्छी रहेगी, सुख रहेगी। तो जीवन के हर मोमेंट में आप चेक कीजिए, जब किसी से व्यवहार करते हैं, शब्दों का हो, संकल्पों का हो या कर्मों का हो, आप क्या दे रहे हो चेक कीजिए। सारा बताने के पीछे यही का एक कंक्लूजन है कि आपके हर व्यवहार में आप क्या दे रहे हो और क्या ले रहे हो। आप जो दोगे वही आपको मिलेगा। इसलिए नोटिस कीजिए, हर बार नोटिस कीजिए, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आपने हर आत्मा के साथ क्या एक्सचेंज किया चेक कीजिए। और आत्मा समझ के किया या शरीर समझ के किया, ये भी मेहनत की बात है, बहुत मेहनत की बात है कि दिन भर में हम क्या दे रहे हैं, कैसे अटेंशन करके। इसलिए इसका भी शॉर्टकट हम कहते हैं कि आत्मिक स्थिति में आ जाए, अपने आप से सुख ही जाएगा, सबको आनंद ही जाएगा आत्मिक स्थिति में आने के बाद। स्ट्रेस जा ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। आत्मिक स्थिति में रहकर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वह परसेंटेज कमाएंगे, कोई बात नहीं, परसेंटेज मैटर नहीं करते, जीवन मैटर करते। आज आप देखिए, आज सबसे ज़्यादा तनाव हाईली एजुकेटेड पर्सन के लाइफ में, सबसे ज़्यादा तनाव, पारिवारिक तनाव भी वहाँ ही चल रहा है। सबसे ज़्यादा डाइवोर्स किसके जीवन में चल रहा है? जो बहुत पढ़े लिखे हैं। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन ही नहीं है शादी की, वो भी किस बेस के ऊपर? मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे इस प्रकार की लाइफ पार्टनर चाहिए या लाइफ पार्टनर चाहिए, जो भी है। मतलब इसमें क्या हुआ कि वहाँ भी कंडीशन लगाई, लाइफ पार्टनर को भी अपनी पढ़ाई के ऊपर ही घर में लाया, तो आपका पढ़ाई का फाउंडेशन ही स्ट्रेस है। तो वो जब घर में आएगी तो आपको क्या देगी? आपका बेस क्या था उसको घर में लाने का? आपकी पढ़ाई। तो आप जिस बात को एक्सचेंज कर रहे हो जीवन के हर पहलू में, नोटिस कीजिए कौन से बात को एक्सचेंज कर रहे हो, क्या आप कर रहे हो या आपका देह कर रहा है, आपकी पोस्ट पोजिशन कर रहा है। इसलिए कहते हैं जितना हो सके अपनी स्थिति में आ जाए, फिर इन सभी मेहनत से परे हो जाएंगे। ये बहुत तनाव भरी बातें हैं, करना साधारण नहीं है। हर समय अपने ऊपर अटेंशन रखना कि मैं आनंद दे रहा हूँ या दुख दे रहा हूँ, मैं किसी को प्यार दे रही हूँ या नफरत दे रही हूँ, ये पॉसिबल नहीं हर समय नोटिस रखना। बस आत्मी स्थिति में आने के बाद नफरत जा ही नहीं सकती, दुख किसी को मिल ही नहीं सकता अपने से, सुख ही मिलेगा हर किसी को। इसलिए कहते आत्मी स्थिति में आ जाए, और जब तक आप सुखी नहीं हो तब तक आपको अपने जीवन का रस नहीं आएगा, और जब तक आपको अपने जीवन का रस नहीं आएगा तब तक आपको परमात्मा प्राप्ति का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए आपके जीवन का रस लेने के लिए आप सुखी बन जाओ, फिर आपको परमात्मा मिला ये बोलना नहीं पड़ेगा। लोग आपको पूछेंगे भाई क्या मिला है आपको, इतने खुश रहते हैं हर वक्त। बस शरीर ऊपर नीचे है, परिवार ऊपर नीचे है, धन ऊपर नीचे है, लेकिन ये ऊपर नीचे नहीं होगा, यहाँ से आप ऊपर ही रहेंगे, ऊपर नीचे नहीं होंगे। इसलिए आत्मिक स्थिति बहुत आवश्यक है। कुछ भी करके हम कहेंगे मार पीट के या प्यार से, प्यार या मार, जो भी आपको ठीक है, लेकिन आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्थिति के बिना आगे बढ़ना, आत्मिक स्थिति के आगे बढ़ना यानी अज्ञानता होगी, वो ज्ञान नहीं होगा। इसलिए आत्मिक स्थिति को पक्का कीजिए कि मैं कौन हूँ, फिर आगे बढ़िए। बाबा साकार मूल्यों में, अव्यक्त मूल्यों में, सार रूप में आत्मा के बारे में थोड़ा थोड़ा कहता है कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, आत्मा के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ा पाठ है। लेकिन उस पाठ को पक्का करना बहुत आवश्यक है, कुछ भी करके, फिर से कहते हैं कुछ भी करके। जैसे क्लास में होमवर्क देते हैं सबको, वैसे आज से हम सभी एक होमवर्क करेंगे, जो क्लास में भी सुना है, दिन में कम से कम 1008 बार अपने आप को याद दिलाएंगे कि मैं आत्मा हूँ। प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, मस्ट, नहीं करेंगे तो नहीं पा सकते। हठ योग करने कहा भी जाते हैं, फीस भर के जाते हैं, फिर वो 2-3 दिन का शिविर होता है, 10-7 दिन का शिविर होता है, महीना भर का शिविर होता है, वहाँ पैसे भरे हैं इसलिए हम उनकी सारी क्रियाएं करते हैं बिना झिझक के, फिर कितना भी कष्ट हो फिर भी क्रियाएं करते ही रहते हैं हठ योग की। या तो बिना पैसों के सब कुछ हायर मिल रहा है तो क्यों नहीं करते, करना चाहिए हमें। तो आत्मिक स्थिति का पाठ बहुत पक्का करना है, कैसे भी करके जितना हो, फिर आगे बढ़ना नहीं पड़ेगा। जैसे आत्मिक स्थिति का पाठ बढ़ता जाएगा आप आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे आप ही अपना क्वेश्चन हुआ कि जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पा रहा, कर तो रहे हैं लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो कर रहा है वो नहीं कर रहा है, जो कर रहा है वो नहीं कर रहा है, वो अनकॉन्शियसली कर रहा है, इसलिए अनुभव नहीं हो रहा है। तो अनुभव को बढ़ाने के लिए आप करिए हर बात में, सुबह से लेकर रात सोने तक। आज से हम 3 महीने का पुरुषार्थ करेंगे, करके देखिए 3 महीने का पुरुषार्थ। इस पुरुषार्थ में शुरू शुरू में थोड़ा ऊपर नीचे होगा, कोई बात नहीं। इस पुरुषार्थ में खास करके बस आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना, आत्मिक स्थिति का। सुबह से उठते ही, सुबह में उठते ही जब आप बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं, बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद अपने आप को गुड मॉर्निंग कीजिए, और आत्मा समझ के बाबा को गुड मॉर्निंग कीजिए, फिर देखिए क्या है। आत्मा समझ, मैं आत्मा गुड मॉर्निंग कर रही हूँ, कैसे करेंगे अब देखिए। मैं आत्मा मस्तिष्क के मध्य में हूँ, और जैसे आपने आंखें खोली तो बिंदी बोल रही, बिंदी से आवाज निकला कि बाबा गुड मॉर्निंग, फिर देखिए आपकी महसूसता क्या है। बिंदी बोल रही है अंदर से कि बाबा गुड मॉर्निंग हर बात के लिए, देखिए क्या अनुभव होगा। फिर जब आप नहाने जाएंगे तो आप आत्मा आपके शरीर को नहलाए, आप आत्मा शरीर को साफ करेंगे, नाश्ता आप करेंगे, हर बात में अटेंशन, कपड़े भी पहन रहे हैं, आप अटेंशन रखेंगे कि ये शरीर आपका वस्त्र है, इस वस्त्र को समाज में चलने के लिए, अपना पार्ट प्ले करने के लिए एक समाज के वस्त्र पहना रहे बस। फिर क्या होगा, जब भी आप उन वस्त्रों की तरफ देखोगे आपको याद आएगा ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे वस्त्र के भी वस्त्र है, आपको अटेंशन है। मतलब जब तक वो चीज आपके पास है तब तक आत्मिक स्थिति अपने आप आपके पास रहेगी, क्योंकि आपने उस चीज का फाउंडेशन ही आत्मिक स्थिति वाला डाला। तो हर बात के लिए नाश्ता भी करेंगे, एक एक निवाला आप आत्मा खाएं, बस देर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन यही पढ़ाई सबसे बड़ी है। उसके बाद ऑफिस जाना है, बिजनेस करना है, घर के काम करने हैं, जो भी है आप करोगे, आप आत्मा करोगे। एक दिन में ही आपको एहसास होने लगेगा कि जीवन कुछ अलग ही है, बहुत अलग है। आप जीना शुरू कर दो, आप जी हर एक बात आप करते जाओगे, हर एक बात। फिर क्या होगा, आपको जीने का इतना अच्छा एहसास होगा कि एक दिन का जीना भी 100 साल के जीने की तरह लगेगा, एक दिन का जीना, क्योंकि आप जी रहे हो हर बात। मुरली सुन रहे हो, आप सुन रहे हो, योग कर रहे हो, आप कर रहे हो, कहाँ बैठे भी हो आप इस शरीर के साथ बैठे हो, शरीर के साथ। मतलब हर बात में पहले आप, बाबा कहते हैं ना मुरलियों में, हर बात में जब सभी संगठन में है तो हर किसी को कहो पहले आप, आज से याद रखना पहले आप, यहां से वो पहले आप बाद में हो जाएंगे, लेकिन यहां पहले आप हो जाओ, क्योंकि वो पहले आप तो हम करते हैं लेकिन उस आप में कहीं तो लगाव होता है। क्लीन माइंड से आप नहीं होता पहले आप, नोटिस करके देखिए, क्लीन माइंड से नहीं होता, ऊपर ऊपर से बाबा ने कहा है, दिखाने के लिए होता पहले आप आ गया। सच कहा जाए तो आज कोई भी किसी को आगे नहीं बढ़ा रहा है, कोई भी नहीं बढ़ा रहा है, हर किसी को यही लग रहा है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। फिर कोई भी हो संगठन, हर किसी को यही लग रहा है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, ज्ञान में, योग में, धारणाओं में, सेवा में, किसी को नहीं लग रहा है कि दूसरे कैसे आगे बढ़े, दूसरे कैसे, चलो बोलना भी अच्छा नहीं, छोड़ दीजिए। इसलिए अपने आप को चेक कीजिए, पहले आप हैं हर कर्म में, पहले आप, फिर बाकी सब। जहाँ पहले आप हैं वहाँ सब सब कुछ आपके साथ है। हम एक सिंपल सा स्लोगन कहते हैं, सिंपल सा, जहाँ आप हैं वहाँ बाप है, और जहाँ बाप है वहाँ सब कुछ अपने आप है। जहाँ आप हैं वहाँ बाप है, और जहाँ बाप है वह सब कुछ अपने आप है, मेहनत की जरूरत नहीं है। इसलिए पहले आप, कुछ भी हो जाए पहले आप, आपके बिना आपकी यात्रा शुरू नहीं होगी। तो आज से हम पुरुषार्थ करेंगे अपने आप में आने का। आज बहुत सी आत्माएं कहती हैं कि जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए, जीवन का उद्देश्य, लेकिन हम कहते हैं कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। जीवन को जीना अगर आपको नहीं आता तो जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, जीवन को जीना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है, और जो जीना सीख जाता है उसके बाद फिर उद्देश्य बना लीजिए, क्योंकि जीना आपका है, जीवन आपका है, उस जीवन को जीना भी आपको ही है। तो पहले जीना सीखिए, आप आत्मा समझ के हर कर्म करते जाइए, फिर देखिए, फिर उद्देश्य बनाते जाइए। आज क्या हुआ है, हम सभी का बहुत अच्छा उद्देश्य है कि ब्रह्मा बाप समान बनना है, मुम्बा समान बनना है। तो पहले हम आत्मा है उसके समान तो बने, आत्मिक स्थिति के समान। किसी ने कहा था कि हम देवता बनने वाले हैं, तो दूसरे ने कहा पहले इंसान तो बनो फिर देवता बनो। मतलब पहले आत्मिक स्थिति में तो आओ, आत्मिक स्थिति में आने के बाद देवता बनना नहीं पड़ता, आत्मा अब देवता ही संस्कारों से भरी हुई है, देवता ही संस्कारों वाले हैं, तो उसको देवता बनाने की आवश्यकता नहीं, और जो चीज बनाई जाती है वो डुप्लीकेट होती है, जो चीज बनाई जाती है वो डुप्लीकेट होती है। आप देवता हो, बस आपको आपकी स्थिति में आना है, आपके संस्कार डिवाइन है, आपके हर वर्ड एक्शन और थॉट में डिविनिटी है, बस आपको आप में आना है। अगर आप प्रयास कर रहे हो अपने आप को अच्छा दिखाने का या अच्छे बोल बोलने का, मत करो, फंस जाओगे कहां पर। आत्मिक स्थिति में आ जाओ, अच्छे बोल अपने आप निकलेंगे। आत्मिक स्थिति में आने के बाद अच्छा बोलना नहीं पड़ता, वो दिखावा होता है, क्योंकि ऊपर ऊपर से बोलते हैं हर किसी के लिए, अंदर वाला नहीं होता हूँ। इसलिए अपने को अच्छा मत बनाओ, आप अच्छे हो, बनाने की आवश्यकता नहीं, बस आप जो हो उसमें आ जाए, आप अच्छे हो, अपने आप आपको अपनी क्वालिटीज पता चले, आपके अंदर कोई अवगुण नहीं है, सिर्फ गुण ही गुण है, कंप्लीट 100% गुण है। और जिसको आपके अंदर अवगुण दिख रहा है, जिसको आपके अंदर अवगुण दिख रहा है, सच बोले उसके अंदर ही अवगुण है, इसलिए उसको दिख रहा है, आपके अंदर कोई अवगुण नहीं, दुनिया के किसी भी आत्मा में कोई भी अवगुण नहीं है, कोई भी अवगुण नहीं। अगर दिख रहा है मतलब वो हमारी दृष्टि में है, हमारे अंदर है, हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, हम वही बोलते हैं जो हम बोलना चाहते हैं। इसलिए आप किसी के अंदर जो देख रहे हो, आप वही देखोगे जो आप देखना चाहते हैं। अगर आप क्वालिटीज देखना चाहते हो, ढेर सारी क्वालिटीज भरी हुई है, तो क्वालिटीज दिख जाए, लेकिन इससे विपरीत कुछ देखना है, आपके सामने कोई भी आत्मा कोई भी बुरा कर्म कर ले, फिर भी उसके अंदर गुण है, आपको देखना है, आपके हिसाब से वो बुरा कर्म है, कोई किसी को कुछ दुख दे रहा है, कुछ कर रहा है, वो आपके हिसाब से बुरा कर्म है, लेकिन उस आत्मा के हिसाब से अकाउंट की लेन देन है। आप उस कर्म को बुरा बोल के उस आत्मा के कर्म में इंटरफेयर करते हैं और उस आत्मा के साथ आपका खाता बना रहे हैं। किसी आत्मा ने किसी आत्मा के साथ पिछले जन्म में कुछ बुरा किया है और वही आत्मा दो आत्मा या एक दूसरे को रिटर्न दे रही, जो दे रही है, चलो कुछ भी हो रहा है, उसके ऊपर संकल्प चलाने का अधिकार हमको नहीं है, किसी भी चीज को जज करने का अधिकार हमें नहीं है, राइट है या रॉन्ग है, नो, हम किसी को जज नहीं कर सकते कभी। जज करना सबसे खतरनाक बात है, जज करना, कभी नहीं जज करना, और अपने आप को तो कभी नहीं जज करना, जज करोगे तो फंस जाओगे आप, क्योंकि जज आप किस बेस के ऊपर करते हो, जो आपको दिखता है एक्सटर्नल उसी के ऊपर आप जज करते हो। इसलिए बहुत अच्छा थॉट कहा है किसी ने, डोंट जज बुक बाय द कवर, कवर को देखकर बुक को जज नहीं करो। किसी एक्टर एक्ट्रेस का फोटो लगा हुआ है गीता के ऊपर, वो कवर डाला है और किसी प्रोग्राम में दिखाया गया, तो कहेंगे ये तो मैगजीन होगा, लेकिन उसके अंदर गीता है, हर किताब के अंदर गीता है, बस एक कवर दिख रहा है इसलिए कहते हैं वो गीता नहीं है। इस कवर को नहीं देखो, हर किताब के अंदर गीता है छपी हुई, बल कोई 111 में आया है, कोई 4999 में आया है, लास्ट ईयर में आया है, लेकिन हर किसी के अंदर गीता है, हर आत्मा सर्वश्रेष्ठ है, तो किसी को कभी जज नहीं करना है, न उसकी उसके ज्ञान की क्वालिटी से, न योग से, न धारणाओं से, न पुरुषार्थ से, कभी अपने आप को भी जज नहीं करना है। ये क्यों कह रहे हैं, आत्मिक स्थिति में आने के बाद ये जजिंग भी खत्म हो जाता है। आज जजमेंटल पावर इतनी बढ़ गई है, आज जजमेंटल पावर इतनी बढ़ गई है कि जजमेंटल से हर कोई मेंटल हो रहा है, सत्य है, क्योंकि जज ही करते जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये ऐसा है वो वैसे है ऐसे है वैसे। अरे आप अपने आप को देखो, उनको क्यों देख रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, अगर इस ज्ञान में हम चल रहे हैं, सबसे बड़ी बात है हम कहते हैं कि यही सत्य है, यह ज्ञान सत्य है, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, 100% सत्य है। तो फिर ड्रामा सत्य है, ड्रामा सत्य है, हर किसी का पार्ट सत्य है। तो जो पार्ट जो आत्मा बजा रही है वो पूरा सत्य है, तो उसको हम कैसे जज कर सकते हैं कि ये राइट है या रॉन्ग है? वो उसका पार्ट बजा रही है, आप आपका पार्ट बजा रहे हैं, उसके कारण आप न उनका पार्ट बदल सकते हो न वो आपका पार्ट बदल सकते हैं। इसलिए ड्रामा को जिसने समझा है उसने सभी बातों को समझा है। और ड्रामा को समझने के लिए अपने आप को समझना पड़ेगा। जो अपने आप को समझता है वो ड्रामा के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं उठाता कि ये ऐसे क्यों हुआ, नो क्वेश्चन, ऐसी आत्माएं क्यों कर रही हैं, ऐसे इनका बिहेवियर क्यों चेंज हो गया, कभी नहीं क्वेश्चन करेगा। ब्रह्मा बाबा ने कभी क्वेश्चन नहीं किया, ब्रह्मा ने कभी क्वेश्चन नहीं किया, और सबसे बड़ा डायरेक्टर एक्टर वो तो कभी क्वेश्चन ही नहीं उठा रहे कि ड्रामा ऐसे क्यों हो रहा, फिर हम क्यों क्वेश्चन उठा रहे हैं हर किसी के ऊपर? कहना यही है, जजमेंटल नहीं बनना है किसी के भी प्रति, आपको भी नहीं जज करना, अपने आप को, आप जैसे हो वैसे हो, सबसे बेस्ट और यूनिक हो, आपके जैसी कोई भी आत्मा दुनिया नहीं है। आज आप किसी को देख रहे हो बहुत ज्ञानी है, बहुत योगी है, नाम मान शान धन वाली आत्मा है, बहुत है उनके पास, उनके पास बहुत है, इसका मतलब मेरे पास कम है ये इसका अर्थ नहीं निकलता। उनका उनके पास है, मेरा मेरे पास है, वो उनके हिसाब से, मैं मेरे हिसाब से है। कोई 16 घंटा योग करने वाली आत्मा है और मेरा 16 मिनट भी योग नहीं होता, इसलिए मैं कम हूं, ऐसे कभी नहीं समझना। आप भी यूनिक हो, सबसे बेस्ट हो, आप उस 16 घंटे वाले से अपने आप की कंपैरिजन कभी नहीं करना। बहुत बार क्या होता है, कंपैरिजन में ही सारे जीवन चले जाते हैं। अब जब आत्मिक स्थिति में आते हो तो कोई कंपैरिजन नहीं, आत्मिक स्थिति में कभी कोई किसी का कंपैरिजन नहीं करता और कर ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा के अंदर तो गुण और शक्तियां हैं, गुण और शक्तियों का क्या कंपैरिजन करें? कंपैरिजन हमेशा एक्सटर्नल बातों का होता है, इंटरनल का नहीं होता, एक्सटर्नल जो दिख रही है। तो आप हमेशा याद रखना, अपने आप को कभी भी नीचा या ऊंचा नहीं समझना, मत नहीं रहना हमेशा। आप सभी मतलब यहां से हम दो अक्षर सुना रहे हैं, इसका मतलब हम ज्ञानी हो गए या हमारी मूर्खता होगी अगर हम अपने आप को ज्ञानी समझेंगे। सभी एक समान है, ज्ञानी ऊपर बैठा है, एक ही है, उससे बड़ा कोई ज्ञानी है नहीं दुनिया में, सभी अज्ञान है और उनको सिखाने के लिए नीचे आया है। तो खुद को समझना मतलब सबसे बड़ा अज्ञान है। इसलिए अपने आप को कभी जज नहीं करना किसी भी बात में। सबसे पहला पाठ आज के डिस्कशन का, आत्मिक स्थिति का पक्का अभ्यास और जीवन में किसी भी मोड़ में अपने आप को एक्सेप्ट करने की तैयारी रखना, कभी भी रिजेक्ट नहीं करना। आपको कोई कार्य दिया गया और आपसे ठीक से नहीं हुआ, छोटा सा कार्य था, वही कार्य किसी और ने ठीक से करके दिखाया, इसका मतलब आप नीच और वो ऊंच ये नहीं है, कभी नहीं सोचो। उसके पास वो कला है कार्य करने के लिए, इसलिए वो कार्य कर रहे हैं, आपको कला का ज्ञान नहीं इसलिए आप नहीं कर पा रहे हैं, बात खत्म हो गई आपको, या ऊंच नीच की बात कहां से आ गई? कहना यही है, कभी भी कंपैरिजन नहीं करना किसी से भी, अपने आप से भी नहीं करना। अगर आपसे कोई कार्य नहीं हो पा रहा, बार बार आप कर रहे हो नहीं हो पा रहा, छोड़ दीजिए, लेकिन ये कभी नहीं कहना कि मैं इस कार्य के लायक नहीं हूं, कभी नहीं करना। आप उस कार्य से भी ऊपर के लायक हो, उससे भी बड़े बड़े कार्य कर सकते हो। तो सबसे पहला पाठ है आत्मिक स्थिति में आना और अपने आप को एक्सेप्ट करना। दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरे सभी आपको आपकी दृष्टि से देखते हैं, जैसे आप अपने आप को देखते हैं वैसे ही और आपको देखते हैं। उनके पास उनकी दृष्टि नहीं है, उनके पास उनकी दृष्टि नहीं है। जो हमने पहले स्टेटमेंट किया कि किसी को अगर किसी के अंदर अवगुण दिख रहे हैं तो बॉडी कॉन्शियसनेस है, बॉडी कॉन्शियसनेस है। और यह स्टेटमेंट कर रहे हैं कि हर कोई आपको आपकी दृष्टि से ही देखता है, आपकी दृष्टि से माना आत्मिक दृष्टि। अगर आप आत्मिक स्थिति में हो और सामने वाला आत्मिक स्थिति में नहीं है और आपके अंदर उनको अवगुण दिख रहे हैं तो वो उनकी दृष्टि। क्यों? क्योंकि वो पूरे बॉडी कॉन्शियसनेस में है। और जो आत्मिक स्थिति में रहता है उसकी दृष्टि अलग होती है, आत्मा वाली। इसलिए अपने आप को आप जैसे देख रहे हैं वैसे ही सारी दुनिया आपको देखती है। तो सबसे बड़ी बात अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखे, एक्सेप्ट किसी भी मोमेंट में। आज क्या हुआ है, थोड़ा सा भी कोई गलत कर्म हो जाता है, सबसे पहले बहुत बड़ा वार अपने आप के ऊपर करते हैं, अपने आप को रिजेक्ट करते हैं। कर्म तो छोटा सा था लेकिन उस छोटे से कर्म में अपने आप को अपने मार दिया, आपके अपने विश्वास को मार दिया, आत्मसम्मान को मार दिया, सम्मान को निकाल, कुछ नहीं है। तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी, अगर परमात्मा हमें स्वीकार कर सकता है, बाबा हमें स्वीकार कर सकता है, तो हम अपने आप को कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं। हो गया ना, छोड़ दीजिए, ड्रामा में था इसे समझ लीजिए, छोड़ दीजिए, करना नहीं। आप जानबूझ के करना तो नहीं चाहते। आज दुनिया में ऐसा एक भी इंसान आपको नहीं मिलेगा, एक भी आत्मा नहीं मिलेगी जिसको दिल से लगता हो कि मुझे जानबूझ के कोई बुरा कर्म करना है। अब एक भी लाके दिखाओ जानबूझ के उसको लगता हो कि मुझे बुरा कर्म करना है। अब जिनका ड्रामा में पार्ट है, टेररिस्ट का पार्ट है, वो टेररिस्ट नहीं आत्मा, तो उनको भी दिल से नहीं लगता किसी को मारे। पांच टाइम नमाज पढ़ते हो दिन के, मतलब रहम है अंदर, अल्लाह ने रहम सिखाया उनको, प्यार है सबके प्रति, बस वो वश है, परवश है, इसलिए उनसे वो पार हो रहा है। तो आपसे अगर कोई बात हो जाती है छोड़ दीजिए। जीवन में दो बातें होती हैं, एक आपसे होती है, एक आप करते हो। जब आप करते हो तो वो आपका कॉन्शियसनेस है, लेकिन जब आपसे होती है कोई बात तो आप परवश होते हो। फिर अच्छी बात हो या बुरी बात है, आप आपके कंट्रोल में नहीं होते, आप बहते चले जाते हैं और आपसे वो बात हो जाती है। इसलिए अगर हो गई तो आप फुल स्टॉप लगा दीजिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए, बाबा को सुना दीजिए, बात खत्म हो गई। आगे का आगे देखेंगे, उसकी बाबा पनिशमेंट देगा, पद पोस्ट कम होगा, आगे का आगे देखेंगे। फर्स्ट अपने आप को उस समय एक्सेप्ट कीजिए, उस मोमेंट के लिए। जब आपको भी लगता है ना, अगर आपसे कुछ होता है तो आपको बहुत बार लगता है कि मुझे किसी का सहारा चाहिए, कोई मुझे भी तो समझ ले, मेरी मन की अवस्था समझ ले, मेरे संस्कार समझ ले। हर किसी को लगता है कि मुझे कोई समझ ले, लेकिन हम ही हमको नहीं समझते, तो हमें कौन समझे। इसलिए आपसे अगर कोई बात होती है तो वहाँ गिल्टी फील नहीं कीजिए। गिल्टी फील करना मन आपके पास जितनी एनर्जी है उसको ड्रेन करना, खत्म कर देना, और अपने आप को रिजेक्ट करना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है दुनिया का, खुद को रिजेक्ट करना, खुद को सम्मान न देना। बहुतों को तो सम्मान देते हैं, बहुतों को देते हैं, लेकिन खुद को नहीं देते। इसलिए कुछ भी हो जाए आपके लाइफ में है, हो गया तो स्टॉप लगा दीजिए, बाबा के साथ चले, चलते चले बाबा को सुना दीजिए, बाबा ऐसे ऐसे बात हो गई, खत्म है, वही क्यों नहीं खत्म होती। तो सोचना नहीं है। इसमें भी कैसे होता है, जो आत्माएं सोचती हैं वो कभी जीती नहीं, और जो जीते हैं वो कभी सोचते नहीं। थोड़ा अलग ज्ञान है, समझने का प्रयास कीजिए। जो सोचते हैं वो कभी जीते नहीं और जो जीते हैं वो कभी सोचते नहीं। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि जीना हमेशा वर्तमान में होता है, सोचना हमेशा भूत में या भविष्य में होता है। वर्तमान में कभी कोई सोचता नहीं, वर्तमान में सिर्फ कर्म करता जाता है। सोचना है ही नहीं वहां पर, बोलना है तो बोलना है, करना है तो करना है, वर्तमान है। वर्तमान में सिर्फ एक्शन होते हैं, थॉट्स नहीं चलते वर्तमान में। और थॉट्स कहाँ चलते हैं? पास्ट या फ्यूचर में चलते हैं। तो सोचो नहीं, बाबा के ऊपर निश्चय है, खुद की स्थिति में आ गए, बस कर्म करते जाए, सोचना नहीं पड़ता, असोचता। बाबा हमेशा कहते हैं सतयुग का सबसे बड़ा गुण है असोचता, वह किसी भी बात के लिए सोचते नहीं, सोचना पड़ता ही नहीं, सब कुछ वहाँ अवेलेबल है। कुछ चाहिए, कल ये करना है, परसों वो करना है, कुछ नहीं, अभी क्या करना है, इस मोमेंट को, इस सेकेंड को कैसे जीना है। कल के विचार में या पास्ट के विचार में आज भी जा रहा है, अभी का सेकंड भी हाथ से जा रहा है, तो सोचो नहीं, बस लाइफ को आप जीते चलो। इसलिए इस सार में आने के लिए आपको इस असार से निकलना पड़ेगा, शरीर में। तो सार में जब आएंगे तो दुनिया का सारा विस्तार आपके सामने होगा, और विस्तार से आपको सिर्फ सार ही मिलेगा, सुख रहते। तो सार में आ जाए, आप जो हो उसमें आ जाए, फिर देखो प्राप्तियां सारी बातें आपके पास होगी। तो जितना हो सके अपने आप को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करते जाओ, कभी रिजेक्ट नहीं करना किसी भी बात में। आपसे कितनी भी बड़ी गलती हो गई फिर भी एक्सेप्ट करना, फिर से कह रहा हूं, कितनी भी बड़ी गलती हो गई फिर भी एक्सेप्ट करना। कहने के लिए तो बहुत बड़ी बातें हैं कि जब गलती होती है तो किसी को भी हम डांटते हैं, लेकिन वही गलती जब खुद से होती है तो कहते जानबूझ के नहीं की, गलती से हो गए। तो दूसरों से गलती से नहीं हो सकता, सोचिए दूसरे परवश होकर गलती नहीं कर सकते। कहना यही है दूसरे क्या सोचेंगे छोड़ दीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, हो गया ना, फुल स्टॉप। आत्मा समझ हर बात, फिर जीवन बहुत सुखी होगा, क्योंकि पहली बात आप आपकी स्थिति में आ गए, दूसरी बात आपने हर सेकंड को एक्सेप्ट किया। बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था मुरली के प्रश्न के उत्तर में, ये ड्रामा क्रिएटर को, डायरेक्टर को बहुत पसंद है, उसे बहुत अच्छा लगता है, तो आपको भी अच्छा लगना चाहिए। अगर ड्रामा अच्छा लगना चाहिए तो ड्रामा का हर सेकंड अच्छा लगना चाहिए, फिर कहाँ आपको बुरा दिखेगा ही नहीं। अगर बुरा दिख रहा है, अगर ड्रामा के किसी भी सीन में, अपने आप में, किसी और आत्मा में, किसी में भी परिस्थिति में, प्रकृति में, किसी में भी अगर बुरा दिख रहा है, तो आपको वो बुरा उनमें नहीं दिख रहा है, उसमें दिख रहा है। क्रिएटर में बुरा दिख रहा है आपको, डायरेक्टर में बुरा दिख रहा है। अब कह रहे हो कि आपको डायरेक्शन नहीं आ रहा है, ड्रामा को ऐसे बनाया जाता है, दुख किसी ने ऐसे दिए जाते हैं, मतलब ये इनडायरेक्टली उसको कोसना है। इसलिए अपने आप को एक्सेप्ट करना, माना उसको एक्सेप्ट करना, सबसे बड़ी बात है ये, अपने आप को एक्सेप्ट करना। क्योंकि आप उसको प्रिय हो तो आप अपने आप को प्रिय नहीं है, ये कौन सी बात होगी। तो अपने आप को सम्मान बहुत देना, जो आत्मा खुद को सम्मान देती है वही दूसरों को दे सकती है। दूसरों को सम्मान ऐसे नहीं दे सकते जब तक खुद को नहीं दे रहे, तो पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना। रिजेक्ट करना बहुत सहज है, दूसरों को भी और खुद को एक्सेप्ट करना उससे भी सहज है, करते जाओ। फिर आपके जीवन में एक्सेप्ट करते एक्सेप्ट करते एक्सेप्ट करते आप एक्सेप्टेंस की लायक बन जाओगे अपने आप। आपके अंदर जितनी भी खामियां हैं जो आपको अभी दिख रही है, अपने आप निकल जाएंगे। बाबा भी कहते हैं ना, अच्छा अच्छा करते करते अच्छा बन ही जाएंगे। तो अच्छा कहना माना एक्सेप्ट करना, हो गया मुझसे आई एक्सेप्ट, लेकिन मैंने किया तो नहीं जानबूझ के, मेरा इंटेंशन तो नहीं था, से करना है तो कहना यही है, जितना हो सके हर कर्म में चेक कीजिए आपको कि आप पहले तो आप कर रहे हो, और अगर आपसे कुछ हो जाता है तो आप ऊपर नीचे होते हो या स्थिर होते हो, इन सभी बातों को चेक करना। और सबसे बड़ा पॉइंट, आपकी सारी जीवन आपके इंटेंशन से चलती है। जिस क्वेश्चन से हमने स्टार्ट की क्लास की डिस्कशन की, उसी के ऊपर आकर हम अभी रुक रहे हैं, उसी के ऊपर। आपका सारा जीवन आपके इंटेंशन से चलता है। आज आपको अंदर से तो लग रहा है कि मुझे ये सब कुछ मिल जाए, अंदर से मतलब संकल्पों से, लेकिन इंटेंशन संकल्पों से भी परे है। भाव, भाव से संकल्प पैदा होते हैं, संकल्पों से शब्द निकलते हैं, और शब्द से आपके कर्म बनते हैं। तो जो आपका इंटेंशन है ना, वो अंदर से निकलता है, बहुत अंदर से। अगर आपका इंटेंशन क्लियर है तो आपको जो चाहिए वो मिल जाए, जो चाहे इंटेंशन क्लियर है। अगर इंटेंशन ही क्लियर नहीं तो जीवन में सिर्फ टेंशन ही मिलेगा। छोटा सा एक थॉट कहेंगे, आपके हर कर्म बोल और संकल्प का रिजल्ट, आपके हर कर्म बोल और संकल्प का रिजल्ट आपको वही मिलेगा जो आपका प्योर इंटेंशन है। हम कहते हैं, ऊपर से तो कहते हैं कि मुझे घर चाहिए, लेकिन अंदर से कहीं तो आवाज निकलती है, मेरे पास तो घर लेने के लिए पैसे नहीं है। इतना बड़ा घर लेने के बाद मैनेज कौन करेगा, इतना बड़ा घर, इतनी सारी बातें। इंटेंशन क्या है कि वो मुझे नहीं चाहिए, तो कैसे मिलेगा? संकल्प तो कर रहे कि मुझे घर चाहिए, लेकिन अंदर से उसके प्रति, उस संकल्प के प्रति नेगेटिव है सोच, उसको इंटेंशन कहते हैं, तो प्राप्त नहीं हो सकते। जैसे अमृत वेले योग करना है, मतलब संकल्प तो अच्छा है कि अमृत वेले योग करना है, लेकिन अंदर से आवाज निकलती है कौन उठेगा 4 बजे सुबह सुबह, अच्छी नींद लगती है सुबह 4 बजे उठकर भी नींद आ जाती है तो क्या योग करें, जैसे अच्छा सो जाए, मतलब करना ही नहीं है ये क्लियर होता है अंदर से। अगर करना ही नहीं है तो संकल्प कैसे सिद्ध होगा? जब आपका इंटेंशन और संकल्प एक हो जाएगा तो आपके पास संकल्प की सिद्धि आ जाएगी। जब आपका इंटेंशन और संकल्प एक हो जाएगा तो आपके पास संकल्प की सिद्धि आ जाएगी, क्योंकि एनर्जी जो निकलती है आत्मा से, जो वाइब्रेशंस निकलते हैं वो भाव के इंटेंशन के निकलते हैं। आपके शब्द कितने भी प्यारे हो, अंदर से अगर प्यार नहीं हुआ आत्माओं के लिए तो उसको महसूसता नहीं आती उन शब्दों में। और आपके शब्द कितने भी कड़वे हो, लेकिन अगर अंदर से प्यार है तो उसको प्यार ही महसूस होगा। बाबा ने अगर बुरा भला भी कह दिया मुरली ने, बाबा कभी कभी बोलता है कि सभी बच्चे कलयुग में आते आते ना लायक बन गए, फिर भी वो बुरा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसमें प्यार है बाबा का, इंटेंशन बहुत शुद्ध है बाबा का। लेकिन वही शब्द अगर किसी आत्मा ने बोला तो पता नहीं वो उसके लायक रहेगा कि नहीं, हो सकता है। तो कहना यही, आपका इंटेंशन हर कर्म में चेक करो, हर बोल में चेक करो, हर संकल्प में चेक करो, हर व्यवहार में चेक करो, इंटेंशन क्या है इसके प्रति, मैं ये क्यों कर रही हूँ। जब आपके पास क्यों का उत्तर होगा तो आपको सिद्धि मिल जाएगी, मतलब उसकी सफलता मिल जाएगी। अगर अमृत वेला करना है तो पहला इंटेंशन क्लियर हो कि मुझे अमृत वेला क्यों करना है। इंटेंशन, मुरली पढ़नी है तो इंटेंशन क्लियर हो कि मुझे मुरली क्यों पढ़नी है। जब आपका इंटेंशन क्लियर है कि मुरली पढ़ने से मुझे ताकत मिलती है, 100% आपको ताकत मिलेगी। मुरली पढ़ने से मुझे ज्ञान मिल जाता है, मेरा योग बढ़ता है, 100% बढ़ेगा। बस मुरली पढ़ रहे इसलिए मत पढ़ो, या सुन रहे हो इसलिए मत सुनो, इंटेंशन क्या है चेक करो उसके पीछे। मतलब सब जा रहे हैं, सब पढ़ रहे, सब सुन रहे हैं, इसलिए हम कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं होगी, लेकिन उतनी नहीं हो पाएगी जितनी आप संकल्प में प्राप्त करना चाहते हो। तो इंटेंशन की मुझे मुरली की आवश्यकता क्यों है, एक बार आपसे पूछो अपने आप से, फिर अंदर से जवाब निकलेगा कि मुरली से मुझे ताकत मिलती है। जिस दिन मुरली नहीं मिलती मैं वीक हो जाती हूँ, अपने आप मुरली की ताकत मिलती जाएगी, मुरली से मेरा योग बढ़ता अपने आप बढ़ेगा, मुरली से मेरी धारणाएं बहुत बढ़ती जाती अपने आप बढ़ती जाए। किसी भी कर्म के प्रति आपका जो इंटेंशन है वही आपको फल मिलेगा। तो हर कर्म में सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आपका भाव चेक करो, हर कर्म के पीछे क्या है आपका भाव। अगर आत्मिक स्थिति में है तो भाव भी चेक करने की जरूरत नहीं है। ये सारा विस्तार समझा कर फिर से हम सार नहीं आते आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति में आने के बाद ना अपने आप को कभी जज करते हैं, ना दूसरों को जज करते हैं, ना कभी इंटेंशन की परवाह करते हैं, न कर्मों की परवाह करते हैं, न बोध की न संकल्प की परवाह करते हैं। बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं, उड़ते फरिश्ते बनते आत्मिक स्थिति में आने के बाद, कंप्लीट उड़ते फरिश्ते। करना नहीं पड़ेगा, अपने आप आपसे कर्म होते जाएंगे और आपके कर्म आप ही देखोगे और बहुत मजा आएगा। इसलिए जब साक्षी दृष्टा हो जाते हैं कर्मों को तो बहुत आनंद लेते हैं इस ड्रामा का। तो आत्मिक स्थिति का पाठ पक्का करना, कुछ भी करके जैसे पाठ बढ़ाते जाएंगे तो आप अनुभव करते जाएंगे आत्मिक स्थिति और बढ़ती जा रही। इसके लिए अभी थोड़ी सी नई नई विधियाँ बाबा की और डेवलप होके आ रही, रिफाइन होगी, जिसको लास्ट टाइम भट्टी थी पूरा में वहाँ थोड़ी उसको क्लियर कर दी गई उसमें, उसके अंदर की किस विधि से आप आत्मिक स्थिति आपकी बहुत बढ़ा सकते। जैसे आत्मिक स्थिति बढ़ती जाएगी वैसे आपकी सारी ऊर्जा यहाँ एकत्रित होती जाएगी आपके अंदर, और आपके पास इतना पोटेंशियल है, इतनी एनर्जी है कि न सिर्फ अपने आप को बल्कि परिवार को और समाज को सुखी बना सकते हैं। बस आपको आपकी स्थिति जानना है। एक बुद्ध अपनी स्थिति में, आत्मा का तो ज्ञान नहीं था, बस पता आत्म साक्षात्कार हुआ कहते हैं एनलाइटमेंट। तो एक बुद्ध ने इतने विश्व को परिवर्तन किया, तो इतने सारे ब्राह्मण अगर आत्मिक स्थिति में आते तो क्या परिवर्तन होगा। और बाबा हमेशा कहते हैं कि विश्व परिवर्तन तभी होगा जब ब्राह्मणों का एक संकल्प होगा, एक संकल्प तभी होगा जब सभी एक में आ जाएंगे आत्मिक स्थिति में, तब तक एक संकल्प नहीं हो सकता। फिर आपके संकल्प अलग, इनके संकल्प अलग, हर किसी के संकल्प अलग चलेंगे, एक नहीं हो सकता। आत्मिक स्थिति सभी परिवर्तन का, न सिर्फ अपने बल्कि विश्व के परिवर्तन का भी सार है। तो जितना हो सके अपने आप में आ जाइए और सुख आपके पीछे दौड़ेगा, आपके पीछे भागेगा। सुख के पीछे आपको भागने की आवश्यकता नहीं, सुख ही सुख मिलेगा, न सिर्फ आपसे बल्कि बाबा से मिलेगा। तो जितना हो सके आज से 3 मास के लिए आप पुरुषार्थ करेंगे बहुत अच्छा, आत्मा समझ के हर कर्म बोध और संकल्प को करना। फिर देखिए परिवर्तन क्या होता है, होता क्या है अनुभव करके देखिए। 3 महीने ऐसे ही निकल जाए बोलते बोलते, 3 महीने के बाद शायद से फिर से क्लास हो सकता है, तो लेकिन 3 महीने तो निकल गए होंगे। अगर कर लेंगे तो पाएंगे, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं पाएंगे। समय बीतता जा रहा है, अंत समय में आत्माएं वही अपने आप को टिका पाएंगे इस अंतिम घड़ी के अंतिम सीन में जो अपने सीन में खड़े हैं, जो दूसरों के सीन में खड़े हैं। शरीर भी दूसरे का सीन है, अपना सीन नहीं, दूसरों को देखना भी दूसरों का सीन है। फिर आप कितने साल से चल रहे हैं डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी 3 मास में ही आत्मिक स्थिति पक्की है और किसी की 50 साल से आत्मिक स्थिति नहीं है तो 3 मास वाला उससे आगे जाएगा 100%। तो आत्मिक स्थिति कुछ भी कर दे सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ सहज हो जाएगा। इतना सहज होगा कि आप उसके लिए अपने आप को शुक्रिया अदा करेंगे कि इतनी सी छोटी सी बात को हमने समझ लिया और सारा पा लिया। देखो ज्ञान कितना छोटा है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है, बाबा है, परमपिता परमात्मा है, और ये ड्रामा 3 शब्द में ज्ञान है पूरा। लेकिन 3 शब्द का विस्तार करने के लिए बाबा को भी 100 साल लेने पड़ते हैं 3 शब्द के। तो अगर हम समझ जाए तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको क्या लगता है फिर से कि सतयुग के आदि में कौन से आत्माएं आ रही है? सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ चल रहा है ना, सब कुछ अच्छी गति सदगति मिले इसलिए पुरुषार्थ चल रहा है। तो सतयुग के शुरू में कौन सी आत्माएं आएंगी? जिनकी 100% सोल कॉन्शियसनेस स्टेज होगी, 0.1% भी कम होगी तो सतयुग से थोड़ा लेट आएंगे, थोड़ा समय लेट। और बाबा कहते हैं ना सेमी स्वर्ग, अगर आत्मिक स्थिति आदि आदि है, सेमी है, 75% 25% है, त्रेता मुबारक है। इसलिए सतयुग में आने की सबकी चाहना है, आदि में आने की चाहना है, तो यहाँ आदि करनी पड़ेगी। जब यहाँ आदि हो जाएगी और यहाँ ही अंत हो जाएगा तो अपने आप सतयुग की आदि हो जाएगी। इसलिए यहाँ आत्मिक स्थिति जितना हो सके, क्योंकि सारा खेल जिससे शुरू होता है उसको अपने ठिकाने पर रहना जरूरी है, और वही अगर अपने ठिकाने पर नहीं है, नाम मान शान पोस्ट पोजिशन में चल रहा है, तो खेल में कुछ खेलने का फायदा नहीं है, तो फिर उसमें दुख ही मिलेगा खेल में। तो जितना हो सके आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कीजिए, हर कर्म, इवन आपकी हर सांस आप ले रहे हो ये आपको महसूस हो, आपका हर शब्द आपके मुख से निकलता है आपको महसूस हो, हर शब्द जो कान में पड़ रहा है वो आप सुन रहे हो, हर दृष्टि आपसे निकल रही है। बहुत बार हम कहते हैं कि जब संगली पर बैठे हैं, मुरली के लिए बैठे हैं, वेद के लिए बैठे हैं, जहाँ भी है कहाँ मिलते हैं तो एक दूसरे को दृष्टि देते हैं, यहाँ से भी दृष्टि देते हैं, संगली से योग से जब भी दृष्टि देते हैं, इसका मतलब ये है क्या कि जब संगली पर बैठे हैं, योग में है, मिलते हैं, ओम शांति कर दे तब दृष्टि दे और बाद में कैसी भी दृष्टि दे? इसका अर्थ तो ये नहीं निकलता। दृष्टि माना दृष्टि, हर सेकंड वही दृष्टि रहनी चाहिए आत्मिक स्थिति वाली, तब कहेंगे ज्ञान उठाया है। ये तो बस किसी को दृष्टि देनी है 5 मिनट के लिए, तो 5 मिनट के लिए बहुत अच्छी दृष्टि भी अनुभव होता है सबको दृष्टि, लेकिन 5 मिनट उसके बाद न खुद को अनुभव होता है न दूसरों को आता है। यहाँ तक आप हर चीज को देखो तो उसी दृष्टि से देखो जिस दृष्टि से परमात्मा को देखते हो, दृष्टि एक समान होनी चाहिए। तो कहना ही आत्मिक स्थिति में आने के बाद ये सारी बातें अपने आप क्लियर होती। तो आज के छोटे से क्लास का सार हम यही उठाते हैं कि आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी बात, ड्रामा में हमारा पार्ट कुछ भी हो, अच्छे से अच्छा पार्ट प्ले करने का प्रयास करेंगे। अगर कोई गलती हो जाती है तो अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे और हर सेकंड जीवन का एंजॉय करते जाएंगे। हर सेकंड आप अगर इस सेकंड को एंजॉय नहीं करेंगे, बाबा भी हमेशा कहता है, सूरज भाई जी भी बहुत बार क्लास में कहते हैं कि अगर भगवान साथ है और संगम को आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो तो सतयुग में क्या करोगे? सिंपल से बात है, तो संगम के हर सेकंड को एंजॉय करो। फिर आपके थाली में क्या है डजंट मैटर, आपके बदन पर कौन से वस्त्र है डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गाड़ी से जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट स्टेज है, बाबा हमेशा कहते हैं सुख दुख मान शान निंदा स्थिति मान अपमान, हर बात से यहाँ तक फाइनल शब्द कहेंगे पाप और पुण्य, इससे भी परे, इससे भी परे जाना है। आज हर इंसान पुण्य करना चाहता है, लेकिन जो पुण्य करना चाहता है उसी से ज्यादा पाप होते हैं। पुण्य करने की चाहना है उसको पता नहीं।